ओफो, ये अंजलि कहाँ रह गई? आज का एपिसोड इतना खास है और इसको भी ना आज ही लेट होना था।
नरेन,
अंजलि तुम?
नरेन ये बताओ मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है?
अंजलि हम रेडियो पर हैं और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रेडियो पर हमें कोई देख नहीं सकता।
फिर भी नरेन आज का एपिसोड इतना खास है, कुछ तो तैयारी करनी थी ना?
अरे तैयारी करनी थी तो आज के प्रोग्राम के लिए कुछ नया कर लेती।
नरेन वो भी किया है, चलो चलो देर हो रही है, अब प्रोग्राम शुरू करते हैं।
प्रोग्राम शुरू हो चुका है अंजलि।
ओह तो दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्त अंजलि जोशी।
और दोस्तों मैं हूँ नरेन तिवारी और प्रोग्राम है जब चलें शहर की ओर,
वही प्रोग्राम जिसमें होता है आपके लिए भरपूर ड्रामा।
कम से कम कुछ दिन के लिए तो ये पीना छोड़ दो, आपके भाई की शादी है, घर में खुशी का माहौल है।
वैसे तुम इतनी गुमसुम उदास यहाँ अकेले क्यों बैठी थी? कोई खास बात?
हे भगवान, पता नहीं कहाँ रह गए हैं वो। माता रानी उनकी रक्षा करना।
नालायक, सारा खाना मेरे ऊपर गिरा दिया, कथा कहीं का, सारे कपड़े खराब कर दिए।
प्रवास से जुड़ी ढेर सारी जानकारियाँ,
आपके संदेश।
मेरा नाम अनीता धनोलचा, मैं ग्राम कोटी फैगुलकुरण वालू छू। मैं अपना पति ते संदेश भेजना चाहूँ।
नमस्ते, मेरा नाम पूनम रावत, ग्राम भड़ज, पोस्ट मिस्कंडी, जनपद रुद्रप्रयाग।
मेरा नाम सुरवीर सिंह रावत है, गांव का नाम रिगार्ड, डिस्ट्रिक्ट टेहरी। मैं अपने सिस्टर को संदेश दे रहा हूँ, दिल्ली जो कमालपुर में रहते हैं।
मैं दिल्ली से श्रुति बोल रही हूँ। नाना जी कैसे हैं और नानी जी कैसे हैं?
और साथ ही साथ हम जानते हैं आपसे आपकी राय वॉक्स पॉप में।
ये बात सच है कि गांव से शहर आने वाले व्यक्ति का कोई न कोई सपना होता है।
एक अच्छी से अच्छी जॉब पाने के लिए सबसे पहले मनुष्य के पास बल, बुद्धि, विवेक का होना बहुत जरूरी है।
हाँ ये सच है कि पत्नी से दूर रहने में शादीशुदा जिंदगी में झगड़े होने लगते हैं। काफी हद तक देखा गया है कि इन आपसी झगड़ों की वजह से पुरुष जो है अन्य महिलाओं की तरफ आकर्षित होने लगते हैं।
वैसे अंजलि हमारे दोस्तों को तो पता ही होगा कि आज के एपिसोड को पेश करने की खास वजह क्या है। क्या कहा? नहीं पता? अरे वो है आपका प्यार। जब हमने श्रोताओं से पूछा कि वो जब चलें शहर की ओर कार्यक्रम को क्यों पसंद करते हैं तो पता है उन्होंने क्या कहा?
मैं जब से चले शहर की ओर प्रोग्राम का नियमित श्रोता हूँ और मुझे ये प्रोग्राम इसलिए अच्छा लगता है कि यह प्रोग्राम हमें प्रवास संबंधी सभी जानकारियाँ देता है।
मुझे ये कार्यक्रम इसलिए अच्छा लगता है कि कुछ विश्वास में उन लोगों की कहानी आती है जो अपनी जिंदगी कठिनाई से जीते हैं। दूसरा है कि इसमें सफ़र का अनुभव आता है, जिसका सबसे अच्छा अनुभव रहता है उसे इनाम मिलता है, इसलिए मुझे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है।
सबसे पहली बात तो इसमें जो ग्रामीण लोग होते हैं वो जब कहीं बाहर शहर की तरफ जाते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हम लोगों के साथ, और जैसे कि जो दूसरे ग्रामीण लोग हैं उन्हें भी कॉन्फिडेंस मिलता है इस चीज़ से। और दूसरी चीज़ इसमें जो नॉलेज दी जाती है हमें, शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, और इसमें संदेश वगैरह दिए जाते हैं, इसलिए मुझे ये कार्यक्रम पसंद है।
रेडियो कार्यक्रम जो जब चले शहर की ओर हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें प्रवास से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, और इसमें यह है कि अगर हम गाँव से शहर जा रहे हैं तो हमें किस तरह से अपनी केयर करनी चाहिए, इसमें ये पूरी जानकारी दी जाती है।
तो नरेन बढ़ाते हैं हम प्रोग्राम को आगे और सुनते हैं कि शहर की ओर में हमारे पहले एपिसोड से लेकर आज तक क्या क्या हुआ।
दोस्तों शहर की ओर की कहानी शुरू होती है चंदर और मधु की शादी से।
और नरेन, चंदर की शादी करने की वजह थी उसके खेत।
जी हाँ दोस्तों, चंदर के घर में खेतों पर काम करने वाला एक भी सदस्य नहीं था। माँ बूढ़ी हो चुकी थी, एक बड़ा भाई था जो पीने और ताश खेलने में ही मस्त रहता था, भाभी पेट से थी, और सयानी बहन को खेतों पर काम करने के लिए भेजना घर वालों को ठीक नहीं लगता था। तो ऐसे में घर को एक ऐसे सदस्य की जरूरत थी जो खेतों पर काम कर सके और घर चला सके।
लेकिन नरेन, अब हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि खेतों पर तो चंदर भी काम कर सकता था।
लेकिन अंजलि, चंदर तो शादी करने के बाद शहर जाना चाहता था, इसीलिए अपनी माँ के कहने पर मधु से शादी कर रहा था।
और दोस्तों, मधु ये शादी अपने घर वालों के दबाव में कर रही थी जबकि वो आगे पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती थी।
लेकिन अंजलि, किस्मत का खेल निराला होता है, ना चाहते हुए भी दोनों की शादी हो ही जाती है।
बारात आ गई, बारात आ गई। नौ भरे मवे याओ कवे पुरवा जाता देवे नकार
दोस्तों आखिरकार चंदर और मधु ने ना चाहते हुए भी जिंदगी से समझौता कर ही लिया। अब देखिए ये जिंदगी आगे उन्हें कौन कौन से रंग दिखाती है।
तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। पहले तो मैं सोच रहा था शादी करूं या ना करूं, लेकिन अब सोचता हूं अगर ये शादी ना होती तो तुम जैसी खूबसूरत पत्नी मुझे कैसे मिलती।
अच्छा, क्या सचमुच मैं इतनी सुंदर हूँ?
हाँ, क्यों, तुम्हें कोई शक है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ?
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है।
दरअसल मधु, तुमसे एक बात कहूँ?
हाँ कहो।
मधु, अब हमारी जिंदगी दो पहियों वाली वो गाड़ी है जिसमें दोनों को साथ चलना होगा, दोनों को एक दूसरे का साथ देना होगा, हर सुख दुख साथ मिलकर बांटने होंगे, है ना?
हाँ।
हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे, जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे, सौंधी सी हंसी तेरी खिलती रहे मिलती रहे।
नरेन, मधु ने सोचा था कि शादी के बाद उसकी जिंदगी खुशहाल होगी और वो चंदर को आगे पढ़ने के लिए मना लेगी, लेकिन उससे पहले ही चंदर ने अपने शहर जाने की बात कहकर उसके रहे सहे अरमानों पर भी पानी फेर दिया।
और शादी के तुरंत बाद शहर जाना कहीं मधु को बुरा ना लगे, इसलिए चंदर कुछ वक्त के लिए गाँव में ही रुक जाता है। और चंदर का दोस्त उमेश चंदर को गाँव में ही एक परचून की दुकान खोलने की सलाह देता है।
अब नरेन दुकान खोल ली है तो पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही ना।
और पैसों के लिए चंदर मधु से उसके जेवर मांगता है ताकि उन्हें गिरवी रखकर वो दुकान के लिए पैसों का इंतजाम कर सके।
मेरे जेवर?
मधु मेरी बात सुनो।
वो जेवर मेरे परिवार की निशानी है, मैं उन्हें नहीं दूंगी।
मेरे कहने का वो मतलब नहीं है।
मैं सब समझ रही हूँ आपके मतलब को। मैंने कह दिया ना, मैं अपने जेवर नहीं दूंगी।
मैं इन्हें बेच थोड़ी ना रहा हूँ, बस गिरवी रख रहा हूँ। जब दुकान चल जाएगी तो मैं कर्ज के पैसे चुकाकर इन्हें छुड़ा लूंगा। और देखना, एक बार मेरी दुकान चल जाए मैं तुम्हें ऐसे कई सुंदर सुंदर जेवर लाकर अपने हाथों से पहनाऊंगा।
और आखिर चंदर ने परचून की दुकान खोल ही ली।
लो भाई चंदर, मुबारक हो, तुम्हारी दुकान का मुहूर्त भी हो गया।
अरे भाई, ये सब तुम्हारी वजह से तो हो पाया उमेश, अगर तुम सलाह ना देते तो शायद ये दुकान कभी शुरू नहीं हो पाती।
अरे नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे बड़ी, अब कुछ प्रसाद वरसाद खिलाओगे या नहीं?
भैजी सिर्फ प्रसाद क्यों, लड्डू खाओ, क्यों माँ?
हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, ये लो बेटा, ये लो लड्डू।
हाँ लाइए।
दुकान तो खुल गई चंदर की, लेकिन नरेन दुकान कुछ चली नहीं। अब चंदर करता तो क्या करता, साहूकार का कर्ज भी लौटाना था।
और दोस्तों आखिरकार चंदर ने शहर जाने का मन बना ही लिया और अपने दोस्त उमेश के साथ दिल्ली आ गया।
ये दिल्ली है मेरे
दिल्ली आ गई। उतरो 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 उतरो।
उमेश, ए उमेश। अरे भाई उठ जा, दिल्ली आ गई।
आ गई दिल्ली?
हाँ।
चल ले सामान पकड़।
चल भाई कहीं चलकर हाथ मुंह धो ले।
अरे यहाँ बस अड्डे में कहाँ जाएगा, सब बहुत गंदा होगा, कल्पना के यहाँ जाकर नहा लेना।
अच्छा चल तो फिर ठीक है।
अंजलि शुक्र है दिल्ली में उमेश के दोस्त सोबन की भाभी रहती थी, जिनके यहाँ चंदर और उमेश को कुछ दिन के लिए आसरा मिल गया।
लेकिन कितने दिन नरेन, कब तक रखती बेचारी उन्हें अपने घर में? और जो हमारे उमेश जनाब हैं, वो चंदर को बीच में ही छोड़कर खुद गाजियाबाद रफू चक्कर हो जाते हैं।
लेकिन वो तो चला गया।
चला गया?
अभी बस थोड़ी देर पहले गाजियाबाद के लिए निकल गया। कह रहा था कुछ काम था और वो वहीं रहेगा।
वहीं रहेगा? और मैं?
मैंने भी उसे यही पूछा था तो उसने कहा कि तुम किसी सुंदर के साथ रहोगे।
लेकिन ऐसे कैसे जा सकता है वो मुझे यूँ बिना बताए? उसने तो मुझसे वादा किया था कि मेरी नौकरी लगवाएगा, मेरे रहने का इंतजाम करेगा, फिर ऐसे कैसे?
चंदर, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, लेकिन क्या है ना, शाम तक मेरे किरायेदार वापस आ जाएंगे, तब तक तो तुम्हें कमरा खाली करना ही पड़ेगा ना।
अंजलि, ये चंदर के साथ अच्छा नहीं हुआ। चंदर ठहरा गांव का सीधा साधा आदमी, दिल्ली में नया आया है, नौकरी का कुछ पता नहीं और साथ में कुछ ज्यादा पैसे भी नहीं है उसके पास,
और इसीलिए चंदर को मजबूरी में कल्पना का घर छोड़ना ही पड़ा।
अंजलि, चंदर ने कल्पना का घर तो छोड़ दिया लेकिन मुसीबतों ने उसे नहीं छोड़ा।
अब रहने का इंतजाम करने के लिए चंदर को जाना था बदरपुर बॉर्डर, लेकिन गलती से वो पहुंच जाता है द्वारका।
अरे भाई बस रोको, अरे बस रोको।
अरे क्या हो गया भाई?
अरे भैया, तुमसे पूछकर ही तो बैठे थे बॉर्डर जाएगी या नहीं, हम गलत बस में चढ़ गए हैं, बस रुकवाइए जल्दी।
अरे तो जब आवाज लगाकर बिठा रहे थे तब नहीं सुना था क्या? अरे रुक जाए यार, चालान कटवाएगा क्या? ओहो उस्ताद, अरे जरा उतार दियो उस्ताद, चल उतर, अरे उतर जल्दी।
अरे भाई साहब जरा साइड हटिएगा, अरे थोड़ा सा बहन जी। हाँ, अरे यार ये बैग कहाँ अटक गया।
चलिए उस्ताद, बढ़िया, अब पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं, बढ़िया उस्ताद।
लेकिन अंजलि, कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। द्वारका पहुंचने पर चंदर की मुलाकात गजेंद्र नाम के एक आदमी से होती है, और इत्तेफाक से वो भी उत्तराखंड का ही रहने वाला होता है।
अरे क्या हुआ भैया, शाम से बैठे हो यहाँ? भैया अब तो ढाबा भी बंद होने वाला है।
जी वो मैं भटक गया था, यहाँ पूछने की कोशिश की तो कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा था, अब बस थोड़ा थक गया हूँ।
दिल्ली में नए हो क्या?
जी जी हाँ, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, नौकरी की तलाश में गढ़वाल से आया हूँ।
अच्छा, उत्तराखंड के हो? अरे भाई मैं भी उत्तराखंड का ही हूँ, लेकिन मैं कुमाऊनी हूँ।
अच्छा
अच्छा, कोई प्रॉब्लम है क्या?
हाँ, वो दरअसल रहने की जगह ढूंढ रहा हूँ, मुझे बदरपुर जाना था लेकिन गलत बस में चढ़ गया, उसने मुझे यहाँ उतार दिया, अब मुझे रास्ता भी नहीं पता।
अच्छा, आप कहाँ जाओगे?
जी
अरे भाई, मेरा मतलब है रात को कहाँ रुकोगे?
जी अभी तो नहीं पता,
नौकरी भी नहीं है, रहने का ठिकाना भी नहीं है, तो तुमने तो कुछ खाया भी नहीं होगा। तुम्हें देखकर मेरी जिंदगी की कहानी याद आ रही है। अच्छा एक काम करो, अभी फिलहाल कुछ खा लो, फिर तुम्हारे रहने का इंतजाम करता हूँ कहीं।
अरे नहीं नहीं, आप मेरी वजह से परेशान मत होइए।
अरे भैया इसमें परेशानी कैसी है? और वैसे भी अगर इस प्रदेश में मैं तुम्हारे काम नहीं आया तो फिर लानत है भाई, हम दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं। अच्छा देखो, अभी बस पराठे बचे हैं, हैं? वो मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। और सुनो भैया, इस अनजान शहर में मुझे अपना दोस्त समझो।
जी ठीक है।
चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ।
दोस्तों, गजेंद्र चंदर को ढाबे पर ही नौकरी दिलवा देता है जहां उसे खाना बनाने का काम सीखने का मौका मिलता है।
नरेन अभी चंदर की किस्मत करवट ले ही रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना, परेशानियां इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। एक छोटी सी गलती पर ढाबे का मालिक चंदर की पिटाई कर देता है और चंदर नौकरी छोड़ देता है।
नालायक, सारा खाना मेरे ऊपर गिरा दिया, कथा कहीं का, सारे कपड़े खराब कर दिए।
गलती हो गई मालिक, गलती हो गई, मैं अभी साफ कर देता हूँ।
गलती हो गई, अब ये नुकसान क्या तेरा बाप भरेगा?
मालिक हम साफ कर तो रहे हैं, आप हमारे पिताजी के बारे में ऐसा मत कहिए।
साले जबान लड़ाता है मुझसे, ये ले, ये ले।
तूने मेरे पे हाथ कैसे उठाया? मेरे पे हाथ उठाता है? तेरी तो मैं बताता हूँ तुझे।
अरे तू मैं, अरे गिरफ्तार पर हाथ लगाता है,
तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं।
साले दो कौड़ी,
मेरे पिताजी को गाली दी तूने, तेरे को मैं बताता हूँ।
अरे अरे चंदर छोड़ छोड़ छोड़, अरे चंदर मालिक का गिरफ्तार छोड़, अरे मालिक आप छोड़ दीजिए।
अरे तेरे को छोड़ूंगा नहीं, निकल जाए यहाँ से।
हाँ हाँ, मुझे भी तुम्हारे यहाँ काम नहीं करना, मेरा हिसाब कर दो, मैं अभी चला जाऊंगा।
हिसाब चाहिए तुझे, ये ले।
ये क्या, सिर्फ 100 रुपए?
और तू क्या चाहता है, ये ढाबा तेरे नाम कर दूं, इसे उठा और निकल ले।
मुझे भीख नहीं चाहिए, ये ले,
जा रहा हूँ मैं, लेकिन ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया।
अबे जा यहाँ से, बड़ा आया राजा का बेटा बनने वाला।
अरे चंदर, अरे चंदर रुक तो।
गजेंद्र तू यहीं रुक, नहीं तो तेरा भी हिसाब कर दूंगा। 100 रुपए मेरे फेंके हैं उसने, अरे भूखा मर जाएगा भूखा।
एक बार फिर चंदर बेरोजगार हो जाता है और ऐसे में उसे अपने पुराने दोस्त उमेश की याद आती है। दोनों मिलते हैं, साथ पीते हैं और फिर
उमेश तू ठीक कहता था, ये तो सचमुच बहुत अच्छी चीज
है ना।
हाँ, और ये जगह भी बहुत अच्छी है।
चल अब मैं तुझे इससे भी अच्छी जगह लेके चलता हूँ।
वो कहाँ?
इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। चल उठ, अभी रात बाकी है मेरे दोस्त।
देखा अंजलि, गलत सोहबत और बिना सोचे समझे कदम उठाने का नतीजा उमेश चंदर को बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे अकेला छोड़कर चला जाता है और अगली सुबह चंदर बड़ी बुरी हालत में उठता है।
होश में आते ही चंदर वापस गजेंद्र के पास जाता है और गजेंद्र चंदर को बताता है कि उसे एक नए रेस्टोरेंट में नौकरी मिल गई है।
अंजलि एक बार फिर गजेंद्र दोस्ती का फर्ज निभाता है और चंदर को भी उसी रेस्टोरेंट में नौकरी दिलवा देता है।
सर ये मेरा दोस्त है चंदर। सर ये नौकरी के लिए आया है, अगर इसके लिए भी कोई नौकरी हो तो।
ठीक है तुम जाओ, मैं बात करता हूँ।
जी सर।
हाँ तो तुम्हारा नाम क्या है?
जी चंदर।
चंदर, अच्छा इससे पहले कहाँ काम करते थे?
वो द्वारका के पास एक ढाबे पर, वहाँ मैं खाना बनाने का काम करता था।
अच्छा ढाबे पर। अच्छा ये बताओ अगर हम तुम्हें यहाँ खाना बनाने का काम दें तो उसकी पेमेंट क्या लोगे?
जी 4000 रुपए महीना।
4000 रुपए? चंदर देखो ढाबे और होटल के खाने में बड़ा फर्क होता है।
जी
मैं मानता हूँ कि तुमको खाना बनाना आता होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ के हिसाब से खाना बनाना सीखना होगा और हो सकता है उसके लिए तुम्हें यहाँ रसोई में हेल्पर के तौर पे काम करना पड़े।
जी
और जैसे ही तुम यहाँ काम सीख गए तो मैं तुम्हें कुक बना दूंगा।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
उधर गाँव में मधु की मुलाकात नीलम दीदी से होती है जो मधु को जूस बनाने का प्रशिक्षण देती है और मधु घर पर ही जूस बनाने का काम शुरू कर देती है।
16, 17, 18, 19 और ये हो गई पूरी 20 बोतलें।
बौजी ये क्या कर रही हो?
छुटकी, हमारा जूस का पहला ऑर्डर पूरा हो गया।
सच बौजी?
हाँ।
तो अब घर में पैसे आएंगे।
वो तो है।
ये ले मधु, खुश है ना?
खुश क्यों नहीं होंगी, ये मेरी पहली कमाई है।
अच्छा तो अब तू इस कमाई का करेगी क्या?
मैंने अपनी सास को दे दूंगी।
सारे?
हाँ, उन्होंने इसी शर्त पर तो मुझे ये काम करने की इजाज़त दी है।
मेरी एक बात मानेगी मधु?
क्या?
एक काम कर, अपने नाम से हमारे स्वयं सहायता समूह में एक बचत खाता खुलवा ले, इनमें से कुछ पैसे उसमें जमा कर, बाकी के अपनी सास को दे दे।
पर दीदी।
देख इधर तेरे पास कुछ पैसे भी जुड़ जाएंगे, उधर तेरी सास भी खुश रहेगी। अरे पता नहीं कब तुझे पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो कम से कम जरूरत के वक्त किसी से मांगने तो नहीं पड़ेंगे।
इधर शहर में चंदर का कल्पना के घर पर आना जाना लगा रहता था। कल्पना चंदर को अपना अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन चंदर कहीं ना कहीं कल्पना को पसंद करने लगता है और एक दिन कल्पना के साथ रहने की बात कहता है, जिससे नाराज होकर कल्पना उसे घर से बाहर निकाल देती है।
कल्पना, कल्पना।
कौन है? अरे भाई आ रही हूँ।
कल्पना दरवाजा खोलो, मैं चंदर।
चंदर क्या हुआ? चंदर
तो इतनी रात गए, कहीं आज फिर मालिक से झगड़ा तो नहीं कर लिया?
नहीं कल्पना, ये बात नहीं है।
अरे तुम तो रोने लगे, चलो अंदर आओ। बात क्या हो गई?
कल्पना मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ।
क्या हो गया चंदर, कुछ बताओ भी।
कल्पना मधु, मधु को अब मेरी कोई जरूरत नहीं है।
ये तुम क्या कह रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
मधु को अब ना ही मेरी जरूरत है और ना ही मेरे पैसों की। वो कहती है कि पैसों का इंतजाम खुद कर लेगी।
तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है चंदर?
नहीं कल्पना, मुझे तो लगता है कि उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है।
चंदर तुम गलत सोच रहे हो।
नहीं कल्पना, मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकता जिसकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत ना हो।
लेकिन
कल्पना, तुम तो मुझे समझती हो।
चंदर,
तुम ही तो थी जिसने मुझे अजनबी कोई संजान शहर में सहारा दिया।
चंदर मेरा हाथ।
वो तुम ही थी कल्पना जिसने अच्छे बुरे दिनों में मेरा साथ दिया।
चंदर मेरा हाथ छोड़ो।
कल्पना मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारी बच्ची के लिए।
चंदर मेरा हाथ छोड़ो।
मैं तुम और गुड़िया तीनों एक साथ रहेंगे, एक परिवार की तरह।
चंदर निकल जाओ, इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से।
कल्पना
मैंने कहा ना, इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से।
कल्पना तुम मुझे गलत समझ रही हो।
ये बात तुम्हारे दिमाग में आई भी कैसे, और तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ? छी, मैं भी कितनी बेवकूफ थी।
नहीं कल्पना।
चंदर तुम जाओ यहाँ से, और अब कभी दोबारा लौट कर यहाँ मत आना।
नरेन, इधर कल्पना ने चंदर को अपने घर से निकाल दिया, और उधर गजेंद्र के समझाने पर चंदर को ये एहसास होता है कि वो मधु के साथ गलत कर रहा है।
हेलो।
हेलो जी, मैं मधु बोल रही हूँ।
मधु तुम?
हाँ, कैसे हैं आप?
मैं ठीक हूँ मधु, घर पर सब कैसे हैं?
सब बिल्कुल ठीक है, माँ आपको बहुत याद करती है। और सुनिए, हरिंदर भैजी की नौकरी लग गई है ऋषिकेश में।
अच्छा।
हाँ, आपकी नौकरी कैसी चल रही है?
अच्छी चल रही है मधु।
आप वो?
अरे अरे रुक क्यों गई, तुम कुछ कह रही थी।
आप कुछ दिनों के लिए घर क्यों नहीं आ जाते, आपकी बहुत याद आती है, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
हेलो 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 मधु, मधु हेलो, शायद फोन कट गया। कच्चू यार, मधु सचमुच मुझसे कितना प्यार करती है, सब मेरी ही गलती है, सब मेरी ही गलती है यार।
तो दोस्तों, ये थी शहर की ओर की अब तक की कहानी, जिसे आप सुन रहे थे नरेन और
अंजलि की जबानी, आपके अपने कार्यक्रम जब चले शहर की ओर में।
तो उम्मीद है आपको अब तक की कहानी जरूर पसंद आई होगी, और अब आप इससे आखिर तक जुड़े रहेंगे।
ये बांध तू भल सजनी, पिंगला सूट मदन लगनी। ये बांध तू भल सजनी, पिंगला सूट मदन लगनी। चयड़ी सैंडल पहरी, तेरू मिजाज लग तू सरी, हाय क्या लग दिखास। हे छम ना छोरी, तेरी मुखड़ी गोरी, हे छम ना छोरी, सच लग दी चीज बड़ी झकास। हे छम ना छोरी, सच लग दी चीज बड़ी झकास। ये बांध तू भल सजनी, पिंगला सूट मदन लगनी। चयड़ी सैंडल पहरी, तेरू मिजाज ये छमना छोरी, तेरी मुखड़ी गोरी, ये छमना छोरी, सच लगे दी चीज बड़ी छकास। ये छमना छोरी, सच लगे दी चीज बड़ी छकास।
ये छमना छोरी, सच लगे दी चीज बड़ी छकास।
सजी बारा मास। हे छमना छोरी तेरी मुखड़ी गोरी हे छमना छोरी सच लगी दी चीज बड़ी झकास हे छमना छोरी सच लगी दी चीज बड़ी झकास हे छमना छोरी सच लगी दी चीज बड़ी झकास हे छमना छोरी सच लगी दी चीज बड़ी झकास।
दोस्तों, इस कार्यक्रम का मकसद आपके प्रवास की राह को आसान बनाना है
और इसीलिए हम प्रवास से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियाँ इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं और उन्हें पहुँचाते हैं आप तक।
और दोस्तों, इस कार्यक्रम का हमारे प्रवासी दोस्तों के जीवन पर कितना असर हुआ ये जानने की कोशिश की हमने अपनी सामुदायिक संवाददाता अनीता से।
नमस्कार अनीता, स्वागत है आपका प्रोग्राम जब चले शहर की ओर में।
थैंक यू अंजलि।
अनीता, आप ये बताइए कि आप जब चले शहर की ओर कार्यक्रम से कब से और कैसे जुड़ी हुई हैं?
मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस प्रोग्राम में शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ। ये प्रोग्राम जब चले शहर की ओर प्रवासी भाइयों के लिए ही बना है और इसमें प्रवासी भाइयों की जिंदगी से संबंधित बहुत सारी बातें हैं और उनकी जो भी परेशानियां हैं वो इस प्रोग्राम के माध्यम से ही उन्हें सॉल्व किया जाता है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं इसमें एक कम्युनिकेटर रिपोर्टर की हैसियत से काम कर रही हूं और उन तक अपनी पहुंच बना रही हूं।
अनीता, आपके अनुसार जब चले शहर की ओर प्रोग्राम हमारे प्रवासी दोस्तों की जिंदगी में क्या बदलाव लाया है?
जी, काफ़ी बदलाव लाया है। हमारे जो श्रोता हैं वो इस प्रोग्राम को काफ़ी सुनने लगे हैं, काफ़ी सुनते भी हैं और वो जो उनकी प्रॉब्लम जो भी होती है वो मुझ तक पहुंचाते हैं और मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी श्रोताओं तक पहुंचाती हूं और सभी श्रोता इसका बहुत लाभ उठाते हैं।
और अनीता, इस प्रोग्राम में जुड़ने से आपकी अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है?
जी, मेरी ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। पहले मैं एक घर में रहती थी, सिमटी हुई सी, सहमी हुई सी, लोगों के सामने बोलना तो दूर, उनके सामने आ भी नहीं पाती थी। अब मेरे अंदर की झिझक भी दूर हो गई है और अब मैं लोगों से खुलकर बात करती हूँ।
अच्छा, ये बताइए कि कभी कोई प्रवासी श्रोता अपनी किसी परेशानी को लेकर आपके पास मदद के लिए आया है?
जी हाँ, एक बार आए थे मेरे जान पहचान में कोई थे और वो मेरे पास एक जॉब के लिए आए थे। वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्या आप जानती हो कि कहीं पे जॉब वॉब मिल सकती है कि नहीं। तो मैंने उन्हें बताया कि हमारे प्रोग्राम में इसकी जानकारी दी जाती है, तो आप हमारे प्रोग्राम को सुनिए तो उसमें आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उसका हल मिल जाएगा।
अनीता, जैसे कि आपने खुद बताया अभी कि हमारे प्रोग्राम जब चले शहर की ओर के खास सेगमेंट संदेश का आप एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं, तो संदेश आप सबके लेती हैं, हमारे श्रोताओं तक पहुंचाती हैं। हमारे प्रवासी श्रोताओं के लिए क्या आपके पास कोई संदेश है?
जी हाँ, मैं सभी श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम को सुनते रहें और जो उनकी परेशानियाँ हैं वो हम तक पहुँचाएँ, या तो वो चिट्ठी के माध्यम से पहुँचाएँ या फिर संदेश के माध्यम से। और जो भी उनकी परेशानियाँ होंगी उनको इस प्रोग्राम के माध्यम से हल करने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे।
अनीता, आपके संदेश का और हमारे प्रोग्राम में शरीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद अंजलि।
दोस्तों, कार्यक्रम जब चले शहर की ओर शुरू हुए 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और इस दौरान हमें चिट्ठियों के जरिए आपका प्यार लगातार मिलता रहा है।
हमारे काफी सारे श्रोताओं ने चिट्ठियों के जरिए हमें अपने दिल की बातें बताई।
तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आगे भी आप हमें अपना प्यार यूं ही देते रहेंगे और इसे कभी कम नहीं होने देंगे।
दोस्तों, हम आपको बता दें कि कार्यक्रम जब चले शहर की ओर फोर्ड फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस के वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और इसके लिए हम दोनों ही संस्थाओं का आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी ये संस्थाएं अपने सहयोग को बनाए रखेंगी।
तो दोस्तों, अब हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें कि अगले एपिसोड में कहानी वहीं से शुरू होगी जहां पर पिछले एपिसोड में उसे छोड़ा था, यानी चंदर और गजेंद्र के मुंबई के सफर के साथ। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।